यशोमति नन्दनं ब्रजवरनाद सो सर्वप्रथम इस्कॉन धान बाद के सारे भक्तों को मेरा सादर प्रणाम. वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय. हरे कृष्णा. सो हरे कृष्णा. बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सबके साथ बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे. और ये विषय काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी ज़रूरी है आज के जो वातावरण, अभी जो कोरोना का सिचुएशन पूरा चल रहा है. प्रार्थना एकमात्र जो है हमारा सहायक है या एकमात्र हमारा आधार है. तो आज हम इस अद्भुत शीर्षक पे चर्चा करेंगे, प्रार्थना की शक्ति. प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी है, तो उस पे हम आज चर्चा करेंगे. तो प्रार्थना ये शब्द से क्या समझ में आता है, क्या है प्रार्थना करना. प्रार्थना ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है. प्रार्थना को लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. लोग सोचते हैं प्रार्थना करना मतलब शायद एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसका कैसे करना है, उसके लिए कोई जगह चाहिए, यू नो, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए. एक्चुअली प्रार्थना माने इसकी सिंपल एक लाइन की परिभाषा या एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो प्रार्थना करना माने भगवान से बातचीत करना. बस यही है प्रार्थना, भगवान से बातें करना. तो इसके लिए हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे संस्कृत नहीं आता, मैं कैसे प्रार्थना करूँगी, मुझे पता नहीं कैसे प्रार्थना करते, मुझे नहीं आता प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के लिए क्या मंदिर जाना पड़ेगा, क्या करे, कहाँ करे प्रार्थना, तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं. आपको बातें करनी आती है तो बस हो गया, बातें करो. भगवान से बातें करना माने प्रार्थना करना, भगवान से बात करना. तो भगवान से बात करना और भगवान की बात सुनना, ये भक्ति जीवन का सार है. कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कई जगह ये बात की पुष्टि कर चुके हैं या कई जगह पे ये बात बता चुके हैं कि भक्ति जीवन का सार है भगवान से बात करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान से बातें करना. अगर आप देखो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला चैप्टर 4 वर्स नंबर 95 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप भगवान से बातें नहीं कर रहे हो और भगवान की बात सुन नहीं रहे हो तो आपका आध्यात्मिक जीवन का कोई लाभ नहीं है. हमारे आध्यात्मिक जीवन का सार ही है भगवान से बातें करना, भगवान की प्रार्थना करना और भगवान से परस्पर संवाद करना. मतलब भगवान कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, इस लेवल पे आना ही भक्ति जीवन का लक्ष्य है. भगवान श्री विग्रह के रूप में आते ही इसलिए है कि वे अपने भक्तों से परस्पर प्रेम का आदान प्रदान कर सके. और प्रेम का आदान प्रदान कब होगा, जब बातें होगी एक दूसरे के साथ. तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कब करें, प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, प्रार्थना किस किस ने पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहास में किस किस ने की थी, उसका फल क्या था, और उस और हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना की कंटेंट क्या होनी चाहिए, प्रार्थना की भाषा क्या होनी चाहिए, इस सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी लंबा विषय है. तो धैर्य धर के आप जो है आराम से बैठे और हम धीरे धीरे इस विषय के अंदर में जाएंगे. तो सबसे पहले प्रार्थना क्यों करें, मैंने इस पे कम से कम यहाँ 50 रीजंस, कारण लिखे हुए हैं. कितने कर पाएंगे समय की मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम कंप्लीट करेंगे. सो प्रार्थना क्यों करें, क्यों करें हम प्रार्थना. सो सबसे पहला कारण, प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए. प्रार्थना करने से हमारी हमारे कमज़ोर विचारों को शक्ति मिलती है. हमारे कमज़ोर विचार क्या है, साइंटिस्ट रिसर्चर्स कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक 24 घंटे के समय में एक इंसान के मन में 30,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, 30,000 से 40,000 के बीच में विचार आते हैं रोज़ 24 घंटे में। एक हेल्दी पर्सन को कुछ ना कुछ विचार, ठंडा लग रहा है एसी चालू करे, ये करे, पानी पीना है, स्कूल जाना है, इसको ड्रॉप करना है, ये करना है, मैं आज ये करूँगा, इतने सारे 30,000 से 40,000 विचार। और इस 30,000 से 40,000 के बीच में एक विचार ये भी आता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान का भक्त बनना है। तो अभी आप इमेजिन करिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने सारे हजारों हजारों विचारों में से ये एक विचार कहीं दब जाता है, बेचारा कमज़ोर विचार है ये एक विचार जो हम सोचते हैं, मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे अच्छा भक्त बनना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, ये विचार दब जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये जो हमारा ये कमज़ोर विचार है उसे शक्ति मिलती है, उसे शक्ति मिलती है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं ना तब ये विचार दूसरे विचारों को मारता हुआ आगे बढ़ेगा और फिर हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रार्थना करने से हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कमज़ोर विचारों को पुनः शक्ति मिलती है, नरिशमेंट मिलता है। दूसरा कारण, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, इतने बूढ़े वयस में, 70 साल की वृद्ध वयस में वे अकेले अमेरिका गए थे, फिर भी 10 साल के अंदर में 108 मंदिर उन्होंने खोल दिए। तो ये असाधारण काज है। तो कैसे हो पाया ये असाधारण काज, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर सकूँ। सो प्रार्थना करने से क्या होता है, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट होता है। कभी कभी हम सोचते हैं शायद ऐसा एम्पावरमेंट सिर्फ प्योर डिवोटीज के लिए है, वो तो सब बड़े लोग हैं, प्योर भक्त है उनके लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी अगर प्रार्थना करे, साधारण से साधारण, छोटा से छोटा भक्त भी करे तो भगवान उनको भी शक्ति प्रदान करते हैं, और वह भी अपने छत के नीचे, अपनी एक छोटी सी अम्ब्रेला के नीचे भी असाधारण काज कर सकते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं असंभव कारण, असंभव जो लगता है असंभव है वो भी असंभव हो जाता है। आज अगर मुझे विशाखापट्टनम से मायापुर जाना है तो अगर मैं चल के जाती हूँ तो शायद पता नहीं कितने दिन या महीना लग जाए, लेकिन अगर मैं प्लेन में जाऊँगी तो 1 घंटा, विशाखापट्टनम से कलकत्ता 1 घंटे में चले जाते हैं। तो उसी तरह से बिना प्रार्थना के जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति से होता है, जब हम प्रार्थना को मिला देते हैं तो उसमें भगवान की शक्ति मिल जाती है, और जब भगवान की शक्ति मिल जाती है माने एरोप्लेन का टिकट, जिसका 1 महीना लगने वाला था बस वो 1 घंटा में वो काम हो जाता है। जब प्रार्थना करते हैं तो पूरी दुनिया भगवान की शक्ति को देखती है हमारे द्वारा। मेरा ये काफ़ी प्रिय भजन है, वो यहाँ पे बोलते हैं ना भक्त, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यही है भक्तों की कहानी, भक्तों का कहानी यही है, बस भगवान करते हैं क्योंकि भक्त प्रार्थना करते हैं, तो भगवान करवाते हैं उनसे असाधारण कार्य। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है, एक बूढ़ा व्यक्ति इतने हजारों भक्त बना दे, 10 साल के अंदर में इतने मंदिर खोल दे पूरे विश्व भर में, माने भगवान करवाते हैं अपने भक्त से। क्यों? जो भक्त प्रार्थना करता है भगवान की शक्ति उससे जुड़ जाती है। तो सबसे पहले हमने कहा प्रार्थना से कमज़ोर विचारों को शक्ति मिलती है, प्रार्थना से हमें असाधारण असंभव काज भी संभव हो जाता है। तीसरा कारण, प्रार्थना करने से हमारी आत्मा को पोषण मिलता है। यहाँ पे 2 फैक्टर है हमारी जीवन में, एक तो हमारा शरीर है स्थूल शरीर, जो ये अर्थ वाटर फायर, जो भूमि आकाश जलवायु से बना हुआ शरीर, और एक है हमारे सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर एक जो है बैठा हुआ हम आत्मा। तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर की बारे में सोचते हैं, शरीर को पोषण देने के लिए खाना देते हैं, शरीर को ध्यान रखते हैं, शरीर को मेडिसिन देते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं करते, तो इसलिए हमारे जीवन में आनंद नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो जिस तरह से खाना खाने से शरीर को शक्ति मिलती है, प्रार्थना करने से आत्मा को पोषण मिलता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब तक कि हमारे जीवन के हर डायमेंशन को हम सटीक समान भाव से समय नहीं देंगे तो क्या है, हमारा इम्बैलेंस रहेगा, तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। सो प्रार्थना करने से आत्मा को जब पोषण मिलता है तब हम हैप्पी हो जाते हैं। सी, प्रार्थना करने से आत्मा ही नहीं, एक्चुअली प्रार्थना करने से शरीर को भी पोषण मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताती हूँ। बहुत साल पहले ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किताब पब्लिश की थी, द हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रिसर्च प्रस्तुत किए थे कैसे प्रार्थना करने वालों का शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो उन्होंने उस रिसर्च में ये जाना कि जो प्रार्थना करते हैं वे नॉर्मल लोग, जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनसे 7 से लेके 11 साल तक ज़्यादा दिन जीते हैं। ऑन एन एवरेज प्रार्थना करने वालों की आयु ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से वे खुश रहते हैं, उनके मन में एक हिम्मत होती है, एक धैर्य है कि मेरा कोई है, ये मेरी रक्षा करेगा, मेरे ऊपर कोई है। तो वो जो फीलिंग होती है उससे बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम भक्ति के कारण के अलावा भी हमारे शरीर के लिए भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मेरे स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज में, मैंने एक बहुत सुंदर किताब पढ़ी थी, जो किताब का नाम अब याद नहीं है, बट उसमें एक सच्ची कहानी थी। 1957 में डॉक्टर वेस्ट नाम के एक डॉक्टर थे और वे एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। आई थिंक उस पेशेंट का नाम था मिस्टर व्राइट, आप चाहे तो गूगल में इसको देख सकते, एक सच्ची कहानी है। उनको एक अजीब तरीके की डिजीज़ हो गई थी, मेरे ख्याल से उसको लिम्फो कैंसर या कुछ बोलते हैं। यहाँ पे गले के नीचे इतना बड़ा जो है घाव जैसा, ट्यूमर जैसा हो गया था बड़ा सा। तो बहुत सारे डॉक्टर कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था उनको। अब ऐसा हो गया, वो ICU में थे। उसके बाद में जब डॉक्टर ने देखा एक महीने से इनका कुछ कम नहीं हो रहा है, तो लगा नहीं कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहाँ एक दिन सुबह ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल में है तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जो पेशेंट है। अब न्यूज़पेपर में आ गया कि इनको जो पर्टिकुलर डिजीज़ हुआ है, साइंटिस्ट ने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत ट्रायल चल रहे हैं, तो इसलिए वो दुकानों में उपलब्ध नहीं है। अब जब ये पेशेंट को ये दिखा तो साथ ही साथ में उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, नर्स अब डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आए, बोलो क्या हुआ? बोला देखिए आपने न्यूज़पेपर में आया है मेरे इस रोग का मेडिसिन है, तो काइंडली आप खरीद लीजिए। डॉक्टर ने बोला लेकिन आप तो पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में लिखा है, अभी तो दुकानों में नहीं मिल रहा है, इसका अभी ट्रायल चल रहा है। नहीं, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं लाखों करोड़ों देने के लिए तैयार हूँ, आप जो साइंटिस्ट इस पर ट्रायल्स कर रहे हैं आप वहाँ से लेके आ जाइए, लेकिन मेरे लिए लेके आइए, क्योंकि ये मैंने देखा यहाँ पे लिखा है कि सक्सेसफुल है और बहुत जल्द जो है वे लॉन्च करने वाले हैं। अब डॉक्टर को समझ में नहीं आया क्या करे, काफ़ी बुद्धिमान था, उसने क्या किया, जस्ट इसको मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए 10 दिन के बाद में ऐसा ही एक नकली सा कुछ इंजेक्शन लेके आ गया, उसमें वो नमक का पानी भर के बोले मिल गया, लेके आ गए आपके लिए, केवल आपके लिए हम लेके आए हैं डायरेक्टली फ्रॉम लेबोरेटरी, अभी आपको हम इंजेक्शन दे देते हैं। तो इंजेक्शन दे दिया उसको। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, आप गूगल में देख सकते हैं, इसको मेंटली ऐसा फील होने लगा कि वाह मेडिसिन मिल गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो गया, बस अब तो मैं ठीक होने वाला ही हूँ। इतना खुश आसपास के पेशेंट्स को बोलते अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लो एंड बिहोल्ड सच में ठीक हो गया। 10-15 दिन के अंदर अंदर उसकी पूरी सूजन कम, ट्यूमर पूरा गायब। डॉक्टर भी अचंभित हो गया कि ये मन की इतनी शक्ति होती है, अगर कोई मन में सोच ले कि बस मैं ठीक हो जाऊंगा तो ठीक हो जाता है। इतनी भगवान ने हमारे मन में शक्ति दी है। तो फिर उसको साथ ही साथ में डिस्चार्ज कर दिया, घर चला गया, परिवार वाले भी बहुत खुश। 6 महीने के बाद में वो फिर से आया, फिर से इतना बड़ा एकदम पूरा सूजा हुआ। डॉक्टर को समझ में नहीं आया क्या हुआ, उसको साथ ही साथ एडमिट किया, सब चीज किया। 3-4 दिन के बाद में एक दिन शाम को वो बोल रहा था, आपको पता है डॉक्टर साहब वो जो मेडिसिन आपने मुझे दी थी ना, मैंने अभी 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो मेडिसिन जो है काम नहीं कर रही है, वो फ्लॉप हो गया है। साइंटिस्ट ने और भी कुछ रिसर्च किए थे तो उन्हें पता चला कि वो मेडिसिन और काम नहीं कर रहा है। तो अब समझ गए ना आप बात, उसका मतलब उसको अब जो है मेंटली ये लगने लगा कि अच्छा ये मेडिसिन तो फ्लॉप है, मुझे जो मेडिसिन दिया वो तो काम नहीं कर रही है, तो मन उसका डिप्रेस्ड हो गया, तो फिर से जो है ये डिजीज़ बाहर में आ गया। तो मन हमारा बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये सब भगवान की शक्ति है ना, हम तो भगवान की शक्ति है, तो ये भगवान की शक्ति है, हम जो जीव है, जीवात्मा है, भगवान की शक्ति है, तो हमारी मन भी बहुत पावरफुल होता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे आत्मा को पोषण मिलता है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है, तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न, प्रार्थना करने से हम विचारशील हो जाते हैं। से हमारे जीवन का एक प्लान है, हम ऐसे ही बस आज का दिन चला गया, खा लिया, सो गया, पी लिया, ऐसे नहीं है ना। हमको जो ये मानव जीवन मिला है ये बहुत रेयर है, तो हमारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, हमें ये क्या करना है। तो ये प्लानिंग कब आती है, जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, मतलब प्रार्थना में आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना, ठाकुर जी आप ये करिए, या मुझे ये दीजिए, या मेरा जीवन ठीक रखिए, या मेरी ये इच्छा है पूरी करिए, या मुझे भक्त बनाइए, जो भी है आपको कुछ इच्छा करनी पड़ेगी, कुछ बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। उसका मतलब आप विचारशील बनोगे, आप प्लानिंग करोगे, आप केयर फ्री और केयरलेस नहीं रहोगे। तो प्रार्थना करने से जो है पर्सन विचारशील बनता है, सोचता है, समझता है, प्लान करता है, क्योंकि बोलना है मतलब आप कुछ प्लानिंग करोगे। प्रार्थना करने से दयालु हृदय निर्मल हो जाता है। जो इंसान प्रार्थना करता है उसका हृदय निर्मल होता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है मैं किसी को प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मुझे कुछ दे रहा है, मुझे भी किसी की मदद करनी चाहिए, तो एक हृदय में एक निर्मलता आ जाती है। तो प्रार्थना करने से अच्छे अच्छे गुण, प्रार्थना करने से हम विनयी बनते हैं, अभिमान नहीं आता, हमें समझ में आता है कि देखो मैं भी किसी से कुछ मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे भी भगवान से कुछ चाहिए, भगवान मुझसे ऊपर है। तो ये हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो कम हो जाता है। अभी आप देखिए कोविड के चलते बहुत सारी फैक्ट्रीज़, दुकानें, स्कूलें सब बंद है। मेरी अपनी स्कूल जो है अभी बंद पड़ी है, 1.5 ईयर से ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अब आप सोचिए कुछ महीने तक, कुछ साल तक अगर दुकान बंद है, ऑफिस बंद है, कोई नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है धीरे धीरे वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो वॉचमैन है वो बैठा है, वो धीरे धीरे सोचने लगेगा कि मैं ही तो यहाँ का मालिक हूँ, क्योंकि अभी देखा ही नहीं कभी। पहले तो रोज़ सर आते थे, थोड़ा नमस्कार सर, बॉस को गाड़ी का दरवाज़ा खोलते थे, अब कोई नहीं है, इतने बड़े ऑफिस में वो अकेला है। धीरे धीरे वो समझने लगेगा कि मैं मालिक हूँ। तो ये हमारा भी यही प्रॉब्लम है, हम एक्चुअली सोचने लगते हैं मैं मालिक हूँ। हम भूल जाते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा भगवान ने दी है, हम जो पानी पीते हैं वो भगवान का है, ये सूर्य की रोशनी भगवान की है, हम ये जो भूमि पर चलते हैं भगवान का है। भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे ना भगवान, तो हम सोचते हैं हम तो आई एम दी बॉस, मैं बॉस हूँ। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं ना तब हमारी बुद्धि ठीक हो जाती, ओह जिस तरह से अगर बॉस, फैक्ट्री का जो बॉस है वो सिक्योरिटी को फ़ोन करेगा ना, क्या हो रहा है, सब ठीक है, लॉक सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस सर सब ठीक है सर, सब तब उसको बुद्धि आती है, अरे मैं नहीं हूँ मालिक, मालिक तो कोई और है, मैं तो एक सिक्योरिटी हूँ, वॉचमैन हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ बैठना है, प्यून हूँ मैं, जो भी है। उसी तरह से हम जब प्रार्थना करते हैं ना तो हम सतर्क हो जाते हैं, मैं बॉस नहीं हूँ, बॉस तो वो है, सब उनका है, वो मालिक है, मैं सिर्फ यहाँ हूँ बस, ये मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो एक सतर्कता, क्योंकि एज ए मैनेजर जो आप रिपोर्ट करते हो ना ठाकुर जी को, हाँ ठाकुर जी आज का दिन मेरा ऐसा रहा, मैंने ऐसा किया, आप मेरी रक्षा करिए, धन्यवाद, कृतज्ञ, जो भी आप बोलते हो, जिस तरह का प्रार्थना करते हो, उससे आपका और भगवान के बीच का जो रिश्ता है आपको पुनः याद आता है कि वो मालिक है, मैं नौकर हूँ। फिर क्या होगा, मिथ्या अहंकार नहीं होगा। तो प्रार्थना करने से ये फ़ायदा है। प्रार्थना करने से मन का तापमान बना रहता है। ये जो हमें हमारे सौंदर्य पे अहंकार आता है, मैं कितनी सुंदर हूँ, भगवान को देखते शर्म आती है, अरे भगवान तो कितने सुंदर है, अरे मेरे पास कितनी बुद्धि है, फिर हम जब भगवान को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान तो कितने महान है, तो ये हमारा जो तापमान है ना वो सही रहता है, नहीं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। कृतज्ञता, प्रार्थना करने से हमें कृतज्ञ होना आता है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, मुंह से बोलते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया, तो ये जब हमारे मुंह से निकलता है, हम धीरे धीरे कृतज्ञ, ये जो ग्रेटफुल का क्वालिटी है, ये आता है। एंड ए ग्रेटफुल हार्ट इज़ ए हैप्पी हार्ट। जो कृतज्ञ होता है वो ही भगवान का नाम ले पाएगा, जप कर पाएगा, वो ही भगवान से जुड़ पाएगा। जो हमेशा रिसेंटफुल है, दुखी है, वो कैसे भगवान से जुड़ पाएगा। तो ग्रेटफुल, इंग्लिश में बोलते हैं दोज़ हू आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेटफुल, बहुत बड़े मूर्ख है वो जो ग्रेटफुल नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमें कृतज्ञता आती है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें दूसरों को सम्मान देना आता है, क्योंकि अब हम भगवान को सम्मान देते हैं, समझते हैं भगवान कितने बड़े हैं, ये जो हमारा सिर है जो किसी के सामने झुकता नहीं वो अब झुकता है भगवान के सामने, तो धीरे धीरे हम विनयी होते हैं और दूसरों को भी सम्मान देते हैं, दूसरों को भी वैल्यू हमें समझ में आती है। तो जब हम प्रार्थना करते बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हम में आते हैं। प्रार्थना करना माने भक्ति में तड़का लगाना। आप दाल में तड़का लगाते हैं ना, आप दाल को बॉईल करके रख दोगे तो दाल में कोई टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा घी का तड़का लगाओगे, जीरा हल्दी सब दोगे तो एकदम स्वाद आता है। भक्ति में प्रार्थना है तड़का। आप जो भी सेवा करते हो प्रार्थना होनी चाहिए, उसके साथ में आपका मन जुड़ा रहना चाहिए, तभी भक्ति में आनंद आएगा। अगर भक्ति में प्रार्थना का तड़का नहीं है तो भक्ति यांत्रिक हो जाएगी, और भक्ति अगर यांत्रिक हो गई तो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, फिर आप बोर हो जाओगे। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगेगा, नया नया मंदिर जाना भी अच्छा लगेगा, नया नया डांस करना अच्छा लगेगा, प्रसाद सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं रेगुलरली भगवान को, तब वो हमारे भक्ति के लता की रक्षा करते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फ्रेग्रेंस, अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति में कमज़ोर होंगे, और पुरानी आदतें और पुरानी भौतिक इच्छाएं फिर से आ जाएगी। जो जो आदतें छोड़ दी थी, चाय कॉफ़ी छोड़ दी थी, प्याज लहसुन छोड़ दिया था, अब वो चीज़ें फिर से आकर्षण करेगी, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारी ये जो सारी भौतिक इच्छाएं हैं ये इतनी जल्दी मरती नहीं है, सो जाती है। सोने में और मरने में बहुत फ़र्क है। अगर आज आपको ऑपरेशन करते हैं तो वो आपको एनेस्थीशिया देते हैं, लेकिन 2-4 घंटे के बाद फिर से वो काम करने लगता है हाथ, थोड़े दिन थोड़ा टाइम के लिए सुन रहता है। डॉक्टर आपका दांत निकालते तब एनेस्थीशिया देते हैं, थोड़े देर तक आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन बाद में फिर से फीलिंग आएगी। उसी तरह से भक्ति में भी जब हम आते हैं हम सोचते हैं अब तो हम प्योर डिवोटी हो गए, सारी बुरी आदतें छोड़ दी। नहीं, ये बुरी आदतें पूरी गई नहीं है, सोई हुई है, कभी भी उठ जाएगी, इसलिए केयरफुल रहना है, कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी है, नहीं तो फिर से वापस जागेगी। फिर से जो आप पहले खाते थे, पहले कैसे मूवीज़ देखते थे, पहले क्या क्या करते थे, सिनेमा जाते थे, फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, वो सारी इच्छा फिर से आएगी, फिर से दिल करेगा। फेसबुक में देखेंगे किसी फ्रेंड्स का वेकेशन पे गए हैं, इधर गए उधर गए, फिर से आपका दिल करे चलो फ़ोन लगाओ चलते हैं, बाबा कभी तो जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर से आकर्षण करेगी। तो इसीलिए प्रार्थना करना है, कंटिन्यूस प्रार्थना करनी है। अगर कोई आदमी जंगल में शीतकाल में ठंडी के झाड़े के मौसम में कोई अंधेरे जंगल में है, बहुत मुश्किल से लकड़ियाँ झोड़ के आग लगाता है, ठीक है लकड़ियाँ झोड़ना भी मुश्किल है, आग लगाना पत्थर को घिस के मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पूरी रात जागता रहना और उस आग के अंदर में लकड़ियाँ डालते रहना, नहीं डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो उसी तरह से कभी कभी क्या बोलते हैं ना, कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांडे भ्रमिते। ये ब्रह्मांड में हम जो इतने योनियों में घूम रहे हैं, इतने इतने योनियों में हम घूम चुके हैं, इतने जन्म हम ले चुके हैं, कोई वैष्णव की कृपा से शायद हमें भक्ति का बीज मिल भी जाए, लेकिन उसको पानी नहीं देंगे, सिंचन नहीं करेंगे तो बुझ जाएगा। तो प्रार्थना से जो है वो टिका रहता है, प्रार्थना नहीं करेंगे तो बुझ जाएगा। और एक फायदा प्रार्थना करने से क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। जब ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठते हैं तो ठाकुर जी जब बैठे हुए तो उनके चरण भी हमारे हृदय में है, और उनके जो चरण होती है, उनके जो पाद पद्म की धूली होती है, वो धूली की जो सुगंध होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, और उनके पाद धूलि की जो सुगंध है उससे हमारा मन तो शांत हो ही जाता है, हमारे आसपास के लोग भी शांत हो जाते हैं और हमारे आसपास के लोग हमसे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए जब प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी गाते हैं, जब प्रभुपाद जी कुछ भी, कितना आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी कोई आरडी बर्मन थे या कोई किशोरदा थे या लता मंगेशकर, फिर भी जब वो गाते हैं, प्रभुपाद जी का कभी आप सुन लो कोई भी भजन, सड गोस्वामी अष्टकम, या बस वो जब वो गाते हैं तो बस मन में एक अजीब सी लगता है, बस शांत। क्यों? क्योंकि वे प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय में भगवान है, भगवान के जो पाद पद्म की धूली है केसर है, भगवान हमारी जो हम जो मट्टी देखते हैं ना वैसा नहीं, भगवान के पाद पद्म की धूली माने केसर, और वो जो उसकी खुशबू है, इसलिए प्रभुपाद जी के आसपास भी जो जाते हैं वे प्रभुपाद जी से आकर्षित हो जाते हैं, प्रभुपाद जी की वाणी से, प्रभुपाद जी की बातों से, प्रभुपाद जी से आकर्षित हो जाते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं वो भक्त एकदम मैग्नेट जैसा बन जाता है, और फिर उसे प्रचार करने में के लिए भी आसानी हो जाती है। हम तो प्रचार मूवमेंट में है, राइट, हमारा सब आप यहाँ मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सब भक्त हैं, आप सब जप करते हैं, मैं समझती हूँ आप सबका, हम सबका एक उद्देश्य है कि हम प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में सबको जप को जोड़ के लेके आए, सबको भक्ति के बारे में बताए, सबको प्रचार करें। तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, राइट। तो ये बात है, प्रार्थना करने से जो है हमें शांति मिलती है, और हमारे आसपास के लोग भी जो है हमारा साथ जब वे लेते हैं उन्हें भी शांति मिलती है, वे भी संतुष्ट हो जाते हैं, शांति और संतोष दोनों मिलता है, सफाई हो जाती है। जब हम प्रार्थना करते सफाई, माता जी लोग दिवाली की सफाई कैसी होती है, एकदम बस यहाँ से कचरा वहाँ से कचरा सब निकाल के घर पूरा साफ कर देते हैं दिवाली में, लक्ष्मी देवी आने वाली है। तो उसी तरह से जब हम प्रार्थना करते सफाई हो जाती है, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते भगवान को, पूरा हृदय साफ, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य सब सफाई, भगवान झाड़ू लेके पूरी सफाई कर देते हैं। प्रार्थना करने से हमारा हृदय भर जाता है, किस चीज़ से भर जाता है, भगवान की चेतना से भर जाता है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हृदय कुछ और चीज़ों से भर जाएगा, लेकिन भरेगा ज़रूर। अगर नहीं करेंगे प्रार्थना तो क्या होगा, भय से भर जाएगा, फियर। किस चीज़ का भय, फ्यूचर का भय, भविष्य का भय, वर्तमान का इल्यूजन, क्या होने वाले हैं, चिंता, फियर, एंजाइटी, लैमेंटेशन, शोक, पूर्व में जो हुआ था, काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, काश वैसा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया, ऐसा हो गया हमारे जीवन में। सो पूर्व की शोक, आने वाले जीवन की चिंता, भय, सो ये सारी चीज़ों से हमारा मन भरा रहता है। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो मन भगवान के विचार से भर जाता है, और ये सारी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचती, तो प्रार्थना से मन भर जाता है। प्रार्थना से मन पवित्र हो जाता है, और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, बुक्स आर दी बेसिस, प्योरिटी इज दी फोर्स। अगर हमें प्रचार करना है इस मोमेंट में आगे, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन पवित्र बने, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। प्रार्थना करने से प्रतिशोधक शक्ति माने इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आजकल इम्यूनिटी इज द वर्ड, आज एक साल से हम लोग बस इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, क्या है, अदरक का काढ़ा पियो, ये पियो, हल्दी खाओ, ये करो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी बढ़ती है प्रार्थना से। किस चीज़ से इम्यूनिटी बढ़ती है, माया से। ये माया नाम का जो वायरस हमारे जीवन में है उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है अगर हम प्रार्थना करें तो। जिस तरह से बोलते हैं ना, वो विटामिन डी लो, क्या है, जिंक लो, ये लो, तो कोरोना आपको अटैक नहीं करेगा। तो बस प्रार्थना करो तो माया आपको जो है अटैक नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है, प्रार्थना से बुद्धि बढ़ती है। इंटेलिजेंस बढ़ती है. भगवान को समझना बहुत मुश्किल है. अनलेस एंड अनटिल भगवान खुद हमें बुद्धि दे उनको समझने के लिए, और भगवान तभी देंगे बुद्धि जब हम प्रार्थना करेंगे. भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरी प्रार्थना करता है दधामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, और फिर हम भगवान को जो है समझ पाते हैं. अब देखिए ब्रह्म संहिता में भी आई थिंक 5.33 में ये श्लोक आता है, वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मबन्धो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. वेदेषु दुर्लभ, वेद बहुत दुर्लभ है भगवान को समझना, लेकिन जो भगवान का अपना है आत्मबंधु वो भगवान को समझ सकता है. और अगर हम भगवान के अपने बनना चाहते हैं तो क्या करना है, प्रार्थना. जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना माने बातचीत करेंगे भगवान से, तब हम भगवान के अपने बनेंगे. जो भगवान का अपना बन जाता है वो भगवान को समझ सकता है. तो प्रार्थना करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है और हम भगवान को समझ पाएंगे. जिसके धाम में जाना है उसको समझना तो पड़ेगा ना हमें. हम जाना चाहते हैं उनके धाम, उनके बारे में ही समझ नहीं पाएंगे तो कैसे जाएंगे उनके धाम. तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी है. प्रार्थना करने से भगवान से संबंध बनता है, भगवान से संबंध बनता है. और भगवान इतने दयालु है, वे कहते हैं कैसे भी करो मेरी प्रार्थना चलेगा, कैसे भी करो मुझसे बात चलेगा, लेकिन बात करो. भगवान रामायण में एक श्लोक आता है ना, सकृते व प्रपन्नाय तव अस्मीति च याचति दधामि अभयम सर्वदा इति व्रत मम मम, ये मेरा व्रत है. अगर कोई एक बार भी कह देता वह अस्मी, भगवान मैं आपका हूँ, ठाकुर जी मैं आपका हूँ. और भगवान कहते हैं भागवत के में एक श्लोक आता है, अगर कोई मजाक में भी कह दे ये बात, शायद सीरियसली नहीं बोला है, बस मजाक में कह दिया, बस ऐवे बोल दिया कि भगवान मैं आपका हूँ, या जल्दबाजी में बोल दिया, या संकट के समय बोल दिया, इतना कोई माइंड में सीरियसनेस नहीं था, बट बोल दे एक बार भगवान का नाम, बोल दे एक बार, भगवान बोलते मैं बस वो मेरा आज से मैंने उसको अपना लिया है ना. ये श्लोक संकेत्यम पारिहास्यम, संकेत्यम पारिहास्यम वा हेलनम स्तोभम हेलनम वा वैकुंठ नाम, एक बार बोले अशेष अशेष जो उनके अघा हरम विधु विधु सब सब क्या बोलते हैं पंडित बोल रहे हैं, अशेष अघा अनलिमिटेड पाप जो है उसके चले जाते हैं, जो एक बार जो है मजाक से हो या भूल से बोल दिया या किसी को चिढ़ाने के लिए बोल दिया, बस एक बार भगवान को याद करे तो इतने प्यारे हैं भगवान, बस वो तो तैयार है हमसे संबंध बनाने के लिए. बस एक बार बोलो, उनसे बात करो, उनका नाम बोलो, उनकी प्रार्थना करो. सो भगवान से संबंध. प्रार्थना करने से हम खरीद सकते हैं किसको, भगवान को. प्रार्थना करने से हम ठाकुर जी को खरीद सकते हैं, बाकी कोई चीज़ से ठाकुर जी इम्प्रेस नहीं होते हैं. आज आप ठाकुर जी के सामने जाके कह दो मेरे पास बहुत पैसा है, ठाकुर जी बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मी तो मेरी पत्नी है. अगर आप बोलो ठीक है ठाकुर जी मैं बहुत सुंदर हूँ, ठाकुर जी बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी सुंदरता तो राधा रानी के पैर के अंगूठे के नाखून से भी कम है. अच्छा बोलो भगवान मैं बहुत फेमस हूँ, आपको पता है मेरे फेसबुक में कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं. भगवान बोलेंगे हाँ लेकिन मैं तो तीनों लोक का नाथ हूँ, मुझे तो पाताल लोक से लेके हर एक लोग जानते हैं. अच्छा भगवान आपको पता है मैं कितने शक्तिशाली हूँ, ठाकुर जी बोलेंगे हाँ मैं तो 7 साल की उम्र में 7 दिन तक पूरा पहाड़ उठा लिया था. अच्छा भगवान आपको पता है मैं बिल्कुल एकदम त्याग कर दिया मैंने, इतने साल हो गए ना प्याज लहसुन ना टी कॉफ़ी ना मांसाहार, निर्जला उपवास हर एकादशी में. तो ठाकुर जी बोलेंगे ये क्या अनासक्ति है, मेरी तो 16108 रानी थी फिर भी मुझे किसी से भी आसक्ति नहीं थी. अब आप बताओ ऐसे ऐसे व्यक्ति को इम्प्रेस करे तो कैसे करे, हर चीज़ हमसे ज़्यादा है उनके पास, तो कैसे उनको आकर्षित करे हमारी तरफ, क्या करे. प्रार्थना, वैष्णवाचार्य बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से भगवान आपके बन जाएंगे, हम भगवान को खरीद सकते हैं. तो ये है प्रार्थना की शक्ति. प्रार्थना है हमारा भगवान के साथ में पर्सनल टाइम, प्राइवेट टाइम, निजी टाइम. अरे हमें चाहिए ना, इस दुनिया में भी हम वेट करते हैं कोई बड़े लोग के साथ हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट, हाँ, अगर कोई प्रधानमंत्री को मिलने जाए, मोदी जी के साथ मेरी पर्सनल ना पर्सनल बात हुई थी, बस ऐसे बैठे थे 10-15 मिनट, हम दोनों बात किए थे, सेल्फी लिए थे, एकदम पर्सनल, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग थे, बस कितना हम महान सोचते हैं कोई बड़े आदमी के साथ, लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे तो इस संसार के विश्व के सबसे बड़े आदमी के साथ हमारी पर्सनल अपॉइंटमेंट है, और उसमें कोई नहीं है, बस आप है और वो है, आप दोनों और कोई नहीं, ये हमारा पर्सनल टाइम है और इसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। कोई बड़े आदमी को मिलते तो हमारा पूरा रहता है ना स्केड्यूल, क्या क्या बात कर लूँ, जल्दी से पूछ लूँ, उनका समय हमें फिर और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो जो पूछना जल्दी जल्दी पूछ लो, बस यही है, ये हमारा पर्सनल टाइम है। और ठाकुर जी बोलते हैं नो हरी, मैं तुम्हारा, बस बोलो जितना, मैं सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तो ये इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो प्रार्थना हमारा भगवान के साथ में पर्सनल टाइम है, जहाँ हम जो चाहे उनसे बात कर सकते हैं। प्रार्थना करने से प्यार हो जाता है, ठाकुर जी से प्यार हो जाता है हमें, उनसे प्यार करना ही तो हमारा जीवन का सार है ना, हम उन्हें भूल गए हैं, और हम प्रार्थना करते ना तो उनसे प्यार हो जाता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, इंटर फर्स्ट ईयर में बम्बई गई थी, मेरे मौसी की बेटी की शादी थी, छोटी थी मैं, ये सब कुछ काफ़ी नया लग रहा था, वो देखने का प्रोग्राम होता है ना, मतलब लड़के वाले आते हैं लड़की को देखने के लिए, तो हमने देखा घर के बड़े लोग बोलते हैं कि सब यहाँ बैठो, लड़का और लड़की साइड में जाएंगे एक कमरे में और बातें करेंगे, तो हम छोटे थे तो हम बोले हम भी जाएंगे दीदी के साथ, हम भी जाएंगे, नहीं नहीं तुम लोग नहीं जा सकते, तुम बैठो, वो लोग बात करेंगे, तो मुझे तब बहुत ऑड लगा, छोटी थी समझ में नहीं आया क्यों ऐसे, वे क्यों अलग से बात करेंगे। उसके बाद जब एंगेजमेंट हो गई तब वे सब समय मेरी दीदी जो है बात करती है मेरे जीजाजी से, तो फिर मैं कंप्लेन करती थी कि ये लोग इतनी सारी बातें करते, तो मैं मौसी बोलती नहीं नहीं करने दो, बात करेंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा, घूमेंगे तो शादी के पहले थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे। तो मुझे समझ में आया है कि हम बायोडेटा से प्यार नहीं कर सकते, इंसान से प्यार करते हैं हम, व्यक्ति चाहिए हमें प्यार करने के लिए, हम सिर्फ अगर बायोडेटा से प्यार करें, कृष्ण वासुदेव जन्म हुआ मथुरा में, फिर गए थे गोकुल, उनके पिताजी का नाम ये है, माता का नाम, ऐसे नहीं होगा प्यार, उनसे रिश्ता, उनसे बातें करेंगे, ठाकुर जी आज ऐसे हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, उनकी उनसे प्रार्थना करेंगे, तब क्या होगा, तभी तो प्यार होगा। एक साधारण भौतिक जगत में भी एक लड़का लड़की जब बात करते करते प्यार होता है, उसी तरह से भगवान से प्यार करना तो बातें करनी पड़ेगी, ठाकुर जी के साथ बातें करेंगे तो फिर हम उनसे प्यार करने लगेंगे। तो प्रार्थना करने से प्यार होता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से मन हल्का होता है, शांत हो जाता है मन, क्योंकि इस दुनिया में हम किसी से भी बात करें ना तो वे हमें जज करेंगे, अच्छा आपके मन में ऐसे बुरे विचार आते हैं, आप ऐसे हो, आप इस तरह के इंसान हो, लेकिन इस दुनिया में वो एक ही व्यक्ति है हमारे शुभ चिंतक, जो हमें जज नहीं करेंगे, हम जो चाहे उनको बोल सकते हैं, वो हमारे डॉक्टर है, उनसे हमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम शर्म नहीं करते, डॉक्टर जी आज सुबह से 10 बार गई हूँ मैं लूज मोशंस, डॉक्टर को कैसे बोलूँ शर्म आ रही है, 10 बार नहीं 2 बार ही गई हूँ, ऐसा बोल दूँ क्या, नहीं हमें पता है सही बताऊँगी तो डॉक्टर मेडिसिन देंगे। उस तरह से ये हमारे शुभ चिंतक है, हमारे मन में जो भी चलता है बस हम बिना कोई हिचक के बोल सकते, ठाकुर जी ये विचार आ रहे हैं मन में, मेरी रक्षा करिए, मुझे ऐसा विचार आता है मैं क्या करूँ, सो ये मन हल्का हो जाता है। कभी कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ मन मुटाव हो गया, ठाकुर जी के साथ जाके बात करो तो मन हल्का हो जाता है, और चिंता भी नहीं है कि वो किसी को बता देंगे। इस भौतिक जगह में तो जिसको हम बेस्ट फ्रेंड मानते हैं कोई गारंटी नहीं है कल आपकी बात किसी को बता देंगे, पर आपकी सारी सीक्रेट आप उनको बता सकते हो और वे किसी को नहीं बताएंगे। प्रार्थना करने से रीइन्फोर्समेंट होता है, सुदृढ़, ये जो हमने सबने भक्ति जीवन में हमारे पैर आगे रखा है, हमने जो ये शुरू किया है, कंठी माला धारण की है, तिलक लगाते हैं, जप करते हैं, हम साधना करते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, ये जो हमने शुरू किया है इसको कंटिन्यू करने के लिए प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। बार बार जब प्रार्थना करेंगे तब हमें बार बार याद आएगा जीवन का लक्ष्य क्या है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी हम भक्ति मार्ग का लक्ष्य क्या है शायद भूल जाए, कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत बार ये कहानी बता चुकी हूँ कैसे एक अपार्टमेंट में बच्चे क्रिकेट खेलते थे, सारे अपार्टमेंट वाले वहाँ पे थक गए थे बच्चों की बदमाशी से, तो एक वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आया रेंट पे फ्लैट में, नए मतलब उसी अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पे, तो सबने बोला आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। बोला क्यों? बोला ये अपार्टमेंट में इतना प्रॉब्लम है, बच्चे लोग सब समय क्रिकेट खेलते हैं और खिड़की के ग्लास टूट जाते हैं, अभी बूढ़ा आदमी बहुत होशियार था, बोला 15 दिन में बंद करवा दूंगा, 15 दिन। बोला हो ही नहीं सकता, 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। बोला मेरी, मैं गारंटी देता हूँ 15 दिन में बंद हो जाएगा। हो गया अभी 15 दिन में। कैसे किया उसने? नीचे गया, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वाह वाह ताली मारी है। बोला कितना सुंदर आप लोग खेल रहे हो, मैं तो बूढ़ा हो गया खेल नहीं पाता, आप लोग खेलते हो तो मन इतना खुश हो जाता है। इधर आओ सब बच्चे, ये लो 100 रुपये, सब जाके खाओ, आइसक्रीम खरीदो, कितना अच्छा आप लोग खेलते हो तो मुझे आनंद आता है, मैं तो खेल नहीं पाता, आप लोग को देख के आनंद करता हूँ। बच्चे बोला अंकल हमें नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं शर्माना नहीं, शर्माना नहीं बेटा, ले लो ले लो ले लो। दूसरा दिन फिर 100 रुपये, तीसरा दिन फिर 100 रुपये, चौथा दिन फिर 100 रुपये। 5वें दिन पे अंकल ने कहा बेटा आज बैंक से पैसा निकालना भूल गया, 50 रुपये देने से चलेगा? बच्चे लोग बोले क्या अंकल आप भी ऐसा बात करते हो, शर्म आ रही है हम लोग को, शर्मा आप हम लोग को लज्जा करवा रहे हैं। कोई बात नहीं अंकल, 50 रुपये दे दीजिए, कोई बात नहीं, उसमें हम खा लेंगे आइसक्रीम। फिर क्या किया, थोड़े दिन के बाद में अंकल बोला पैसा नहीं है, 10 रुपये चलेगा? अब बच्चों को गुस्सा आया कि 2-3 दिन से अंकल बदमाश हो गए, पैसे नहीं दे रहे। फिर बोला देखिए अंकल हम इतने चीप लोग नहीं हैं, 10 रुपये में हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, 100 रुपये आप देते थे, 100 रुपये दीजिए नहीं तो हम गए यहाँ से। अब अंकल हाथ जोड़ के ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो, प्लीज़ प्लीज़ क्रिकेट खेलो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 10 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, मत जाओ यहाँ से। बोला अंकल आप लोग आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हम कहीं भी क्रिकेट खेलेंगे लेकिन इस अपार्टमेंट में हम नहीं खेलेंगे जहाँ पे हमारा अपमान हुआ है। चले गए बच्चे। अब बच्चे भूल गए कि वे क्रिकेट 100 रुपये के लिए नहीं खेल रहे थे, वे तो क्रिकेट खेल रहे थे क्योंकि वो उनको आनंद आता है, लेकिन भूल गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और क्या हो गया वो वहाँ से चले गए। हमारा यही प्रॉब्लम है, हम जब भक्ति जीवन में आते हैं नया नया, हम सोचते हैं कि ये प्रभु जी से मुझे कुछ सीखना है, ये कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, ये प्रभु जी कितने अच्छे हैं, ये प्रसाद कितना अच्छा है, और हमें हम इसी लक्ष्य से आते हैं कि मुझे सुधरना है, मैं अच्छा भक्त बनूंगा, मुझे भक्ति करनी है। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद भूल जाते हैं और फिर हमें लगता है कि मेरा काम है सबको सुधारना, ये देखिए आप इधर ऐसा करो आप ऐसा करो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या था भूल गए, तो भक्ति करने के लिए आए थे हम, तो और गोलोक वृंदावन जाएंगे उस उद्देश्य से आए थे, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, मुझ में क्या खामियां हैं, मैं ये सब कुछ भूल गए, अब दूसरों की खामियां देखने में रह जाते हैं। तो प्रार्थना करने से ये रिस्क नहीं है, कंटिन्यूसली रोज प्रार्थना करेंगे तो रीइन्फोर्समेंट हमारे माइंड में, तुम किस लिए आए हो भक्ति में, तुमने किस लिए ली है दीक्षा, तुम्हारा क्या काम है, अपना जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, पहले अपना जन्म सार्थक करो, पहले खुद अच्छा भक्त बनने की कोशिश करो। तो ये होता है आकर्षित, भगवान को हम आकर्षित कर सकते हैं। अब प्रार्थना करने से भगवान का ध्यान हम पे जाएगा, और भगवान का ध्यान हम पे जाएगा तभी तो दरवाज़ा खुलेगा। गोलोक वृंदावन का दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलता है, ऐसा कुछ है ही नहीं उधर, कोई डोर नॉब कुछ नहीं है, गोलोक वृंदावन का दरवाज़ा अंदर से खुलता है। तो अंदर से कैसे खुलेगा, आप किसी के घर के सामने खड़े रहोगे, आपको दरवाज़ा नॉक तो करना पड़ेगा ना, आप नॉक नहीं करोगे तो क्या अपने आप से दरवाज़ा खुलेगा? प्रार्थना माने हम चिल्ला रहे हैं, हम नॉक कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलिए दरवाज़ा खोलिए, हमें अंदर आना है। जब हम प्रार्थना करते तब भगवान खोलते दरवाज़ा, आ जाओ। लेकिन अगर हम खड़ा रहेंगे नहीं, उनको समझ में आ जाएगा नहीं, उनको समझ, तो फिर आप खड़े रहोगे पूरा जीवन, दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। सी आप बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा, विलन जब हीरोइन को अटैक करता है ना, फिर हीरोइन बोलती है बचाओ बचाओ, फिर हीरो आता है। अगर हीरोइन बोलेंगे मैं क्यों बोलूँ, वो तो समझ जाएंगे। कहीं कुछ बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है माता जी, भगवान तो हमारे हृदय में है, वो सब समझ जाएंगे। तो अब हीरोइन अगर बैठ गई कि हीरो आ जाएगा हीरो आ जाएगा, तो नहीं उसको चिल्लाना तो पड़ेगा बचाओ बचाओ, तभी तो वो आएगा एकदम दीवार को लांद के। बस ये प्रार्थना माने पुकार है, प्रोपा जी कहते प्रार्थना माने एक बच्चे की पुकार, माँ को पुकार रहा है, जब पुकारेगी तभी तो माँ भाग के आएगी ना। तो ये प्रार्थना माने भगवान को पुकारना, तो भगवान तब गोलोक वृंदावन का दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा। प्रार्थना करने से हमारी चेतना में कृष्ण आ जाते हैं। हम जो इस संस्था के साथ जुड़े हैं, अंतर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये क्या है, अंतरजातीय कृष्ण भावनामृत संघ, माने हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही है कि हमारी भावना हमारी कॉन्शियसनेस हमारी चेतना कृष्णा कॉन्शियस बनना है हमें। तो प्रार्थना करने से ही हम कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं, नहीं तो हमारे कॉन्शियसनेस में कृष्णा के अलावा सब कुछ है। हमारी चेतना में भगवान को डालना है तो प्रार्थना करनी है। तभी वील बिकम कृष्णा कॉन्शियस. एंड इफ वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस. ये हमारे भक्ति जीवन का सार है, गोल है, टू बी कृष्णा कॉन्शियस. और दूसरी बात ये है, हम जब मंदिर भी आते हैं, हमारी बहुत ही अलग अलग विचार है. मंदिर में भी हमें आध्यात्मिक विचार भी आते हैं, भौतिक विचार भी आते हैं. अब आप मंदिर में आए हो, हाँ, मंदिर में बैठे हो, किसी लड़की को देखा, कितनी सुंदर है, मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगी, कितने अच्छे गुण हैं, इनके माँ बाप क्या करते हैं. कोई मंदिर में इंडस्ट्रियलिस्ट आया, कोई बड़ा आदमी, अच्छा मैं इसको जॉब के लिए पूछ सकता हूँ, मुझे हेल्पफुल रहेगा. ऐसी कितनी सारी भौतिक विचार आते हैं. आध्यात्मिक विचार भी आते हैं, भगवान का ड्रेसिंग कितना सुंदर है, आज भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं. तो कभी भौतिक विचार आते हैं, कभी आध्यात्मिक विचार आते हैं. मन पेंडुलम के जैसा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होता है. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, मन स्थिर हो जाता है. प्रार्थना करते समय और कोई भौतिक विचार नहीं है, बस आप हो और ठाकुर जी है, और आप प्रार्थना कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो. तो यहाँ कोई भौतिक विचार आने की जगह नहीं है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए. प्रार्थना करने से इंद्रियों का संलग्न, इंद्रियों को हम कंट्रोल कर पाएंगे, एंगेज कर पाएंगे. हमारी जो इंद्रियां है वे काफ़ी एक्टिव है. आप उनको बोलेंगे बस बंद करो, बैठ के एकदम माइंड क्लोज करो, तो नहीं रह पाएगी. काम चाहिए, कुछ करना है. जब प्रार्थना करेंगे तो बिजी हो जाएगी, मन बिजी हो जाता है, हाथ बिजी हो जाते हैं. हम जब प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं, सब हमारे शरीर का हर एक पार्ट बिजी हो जाता है. तो हमने अभी क्या किया है, इंद्रियों का दमन नहीं किया है, उनको डपटेल कर दिया है, कृष्ण की ओर उनको मोड़ दिया है. तो प्रार्थना करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर विदाउट डिज़ायर, विदाउट मूवमेंट नहीं रह सकता, उसे काम चाहिए. जब तक ये शरीर है तब तक कुछ ना कुछ. तो इसलिए हम दमन नहीं करेंगे, हम उसको भगवान की ओर उसका उपयोग करेंगे. प्रार्थना करने से काम आसान हो जाता है. कुछ भी काम करने के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है. ब्रह्मा ने भी प्रार्थना की थी. ब्रह्मा का जब उनका खुद की जब सृष्टि हुई, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जब बाहर निकले, तब उन्हें सब कुछ अंधकार ही लग रहा था. फिर जब भगवान के मुख से ये शब्द निकला, तप 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 करो, तब ब्रह्मा जी ने 100 साल तप किया, तब जाके सब कुछ दिखाई दिया उन्हें, सब जो है सब प्रकाशवंत हो गया. तो हमें अगर कुछ भी करना है, हमें अगर भगवान की कृपा की ज़रूरत है, और भगवान की कृपा प्रार्थना के द्वारा आती है. और नॉट ओनली दैट, बोनस ये है कि अगर प्रार्थना करके करेंगे तो काम आसान हो जाएगा. चैतन्य चरितामृतम के आदि लीला के 14वें अध्याय का प्रथम श्लोक, वहाँ पे बोलते हैं, दुष्करम सुकरम भवेत. अगर भगवान का नाम लेके कोई काम करते हैं तो दुष्करम सुकरम भवेत. जो कठिन है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, वो भी आसान हो जाता है. लेकिन विस्मृति, अगर भगवान की विस्मृति होती है तो विपरीत स्यात, उसका उल्टा हो जाएगा, आसान चीज़ भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी. जो चीज़ काफ़ी आसान है, हमें लगेगा कब से कोशिश कर रही हूँ, बस हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भगवान को याद नहीं किया. और अगर भगवान को याद किया तो क्या होगा, कठिन से कठिन चीज़ भी आसान हो जाएगी. लेकिन हमारी रीजनिंग होती है, टाइम नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, करने की तो बहुत इच्छा है, आज तो आपका क्लास सुनने के बाद बस लगता है कि प्रार्थना करूँ, समय नहीं है. समय इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके पास में कुछ काम है. वो काम करने के लिए जितना समय लगता है, अगर आप प्रार्थना करोगे तो कम समय में वो काम हो जाएगा. मैं आपको एक बताती हूँ एग्जाम्पल. एक लकड़हार था, लकड़ियाँ काटता था, उसका वही काम था. तो रोज़ की 100 झाड़ जो है वो काट फेंकता था. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन रोज़ उपयोग करते करते जो कुल्हाड़ी की जो धारा है ना, मतलब वो ब्लंट हो गया. तो अब क्या है, रोज़ का 100 के बदले में 50 ही झाड़ होते थे. तो एक वहाँ से साधु जा रहा था, तो उसको एडवाइस दिया, उसने सजेशन दिया, बेटा देखो तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है ना, वो अब तेज़ नहीं है, धार नहीं है उसकी, थोड़ा सा उसको शार्प करो, तब तुम्हारा काम जल्दी होगा. तब लकड़हार ने जवाब दिया, साधु महाराज, ऐसे ही मेरे को टाइम नहीं इनफ हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है उसमें, आप मेरा टाइम वेस्ट करवा रहे हो. अब बोलते बैठ के, कौन बैठ के अब उसको तेज़ करेगा. अब ये तो मुरकता है ना, अगर 15 मिनट निकाल लेता और कुल्हाड़ी को तेज कर लेता तो जो काम उसको 10 घंटे लगते वो 5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ये मूर्ख है, सोचता है टाइम नहीं है, अब कहाँ इतने में आप फिर मेरे को टाइम वेस्ट करवा रहे हो। हमारा भी यही प्रॉब्लम है, हम सोचते नहीं एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ माता जी, मुझे तो करना अच्छा लगता है, टाइम नहीं है ना, टाइम होगा तुम करेंगे, पर अगर तुम प्रार्थना करोगे तभी तो टाइम निकलेगा ना, तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर चीज़ आसान हो जाएगी, तो फिर तुम्हें और भी टाइम मिलेगा। शुरू तो करो, एक पैर लो भगवान, 10 पैर तुम्हारी तरफ चलेंगे, तुम एक कदम आगे करो तो भगवान 10 कदम तुम्हारी तरफ चलेंगे, पर शुरू तो करो। तो ऐसे अनेक रीजंस है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ये करेंगे। तो हमने डिस्कस किया कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, अब मैं बताना चाहती हूँ प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कैसे करें प्रार्थना। तो 3 इसके ये हैं, मन से, हमारे विचारों से, BMW अब याद रखिए, बॉडी माइंड एंड के वर्ड्स, सॉरी BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो बॉडी माने आपके शरीर से, माइंड माने आपके मन से, वर्ड्स माने वचन से। सो आप अपने वचन से, अपने मन से, अपने शरीर से प्रार्थना कर सकते हो। मन से प्रार्थना कैसे करें, अगर आपने चैतन्य चरितामृत में ये कथा सुनी हो, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी वे मन से ही भगवान की सेवा करते थे, मन से ही वे सोचते थे, जब भी भगवान जा रहे हैं वृंदावन की ओर तो वे मन से ही भगवान के लिए रास्ता बनाते थे कि एक सुंदर सा रास्ता है, इसमें मैंने भगवान के लिए बहुत सारे सुकोमल पंखुड़िया फूल पूरे बिछा दिए हैं और बहुत सुंदर सुंदर झाड़ है, भगवान को जो झाड़ की छाया में चल रहे हैं। तो ऐसे मानसिक रूप से भगवान की सेवा करते थे और भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते थे। और हमने ये भी कथा बहुत बार सुनी है, कैसे गोदावरी तट के पास एक ब्राह्मण रहता था जो मन से ही भगवान के लिए खीर बनाता था, और एक दिन गरम गरम खीर वो छूता है कि भगवान के लिए गरम गरम तो नहीं है ज़्यादा, और उसकी हाथ उसकी उंगलियां जल जाती है। तो भगवान मानसिक सेवा स्वीकार करते हैं, तो आप मन से भगवान को प्रार्थना कर सकते हो, मन से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, मन से आप जो है उनकी प्रार्थना कर सकते हो, मन से आप मानसिक प्रणाम कर सकते हो भगवान को। जब हम भगवान को मंदिर में प्रणाम करते हैं तो साष्टांग है या पंचांग है या अष्टांग प्रणाम है, सब प्रणाम का एक मेन इंग्रेडिएंट है कि आप अपने मन से सोचो कि ठाकुर जी के श्री चरण, के दोनों श्री चरण मेरे सिर पे है, ऐसा विचार हमारे मन में होना चाहिए जब हम प्रणाम करते हैं। तो ये हो गया मानसिक रूप से प्रार्थना करना। अब वचन के द्वारा, वचन से हम कैसे प्रार्थना करें, तो वचन से अलग अलग टाइप है। जैसे एक है आप भगवान से बात करो अपनी भाषा में, क्योंकि लकीली भगवान को इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, पंजाबी और तमिल, ओरिया, संस्कृत हर एक भाषा आती है, इसलिए हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि हमें संस्कृत नहीं आता। आपकी जो भी भाषा है आप उसी भाषा में बात कर सकते हो, उसी भाषा में उनके साथ उनको प्रार्थना कर सकते हो। तो एक अपनी खुद की प्रार्थना, अब कोई बोलेगा मुझे प्रार्थना करना आता ही नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं क्या बोलूँ ये भी समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, कॉपी करो, किससे, भगवान के भक्तों से, जो अलग अलग स्तुति है श्रीमद् भागवतम में, बस उस स्तुति का कोई अगर बाय हार्ट भी नहीं है कोई बात नहीं है, पुस्तक से पढ़ो, पढ़ के बाय हार्ट करो, पढ़ के बोलो, तभी भी भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि ठाकुर जी को ये सारे भक्त जो भागवत में है, जिनका नाम है, जिन्होंने भगवान के लिए स्तुति की थी, वे भगवान के प्रिय है, तो भगवान के प्रिय ने जो बातें बोली थी वे पुनः पुनः सुनने से उनको अच्छा लगता है, उनको अपने भक्तों की याद आती है तो वे खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हम भगवान के भक्तों की स्तुति, जैसे आप देखिए भागवत के प्रथम स्कंध 7वें अध्याय में अर्जुन की स्तुति है, 8वें अध्याय में कुंती देवी की स्तुति है, 9वें अध्याय में भीष्म देव की स्तुति है, भागवत के दूसरे स्कंध में चतुश्लोकी है, हमारे तीसरे स्कंध में जो अनबॉर्न चाइल्ड जो है गर्भ में जो शिशु है उसकी स्तुति है, 4th अध्याय चौथे स्कंध में ध्रुव महाराज की स्तुति है, प्रचिता की स्तुति है, 5वें स्कंध में हमारे ऋषभदेव के इंस्ट्रक्शंस है, 6ठे स्कंध में वृत्सासुर की स्तुति है, 7वें स्कंध में प्रहलाद महाराज की स्तुति है, 8वें स्कंध में गजेंद्र की स्तुति है, 10वें स्कंध में गोपी गीत है, गोपी की स्तुति है, नागपत्नी की स्तुति है, ब्रह्मा की स्तुति है, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति है, नल कुबेर और मणिग्रीव की स्तुति है, कितनी सारी ऐसी अलग अलग स्तुति है भागवत में। कोई भी एक स्तुति जो आपकी अच्छी आपको अच्छी लगती हो, आप उसको या तो बाय हार्ट करो या तो देख के पढ़ो, तो ये हम एक कर सकते हैं। दूसरी बात है हमारी अपनी भाषा में हम भगवान से, जैसे नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बस आप भगवान से बात करो। और एक आदत है, अगर आप बचपन से करोगे, आई मीन जितना जब भी आपको ये बच्चे स्पेशली जो है आपके घर में, उनको आप जो है बचपन से सिखा सकते हो, बस भगवान से बात करना। कोई भी चीज़ जैसे वो स्कूल से आते हैं, भगवान से बात करें, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसा हुआ, जो चीज़ खरीदे भगवान को दिखाए, प्रार्थना कर, यही है प्रार्थना करना, मतलब उनके साथ संबंध बनाना। सो स्तुति करो, स्तव करो, जप करना भी प्रार्थना करना है। हम जो ये जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी प्रार्थना है। प्रार्थना क्योंकि इसमें हम प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्णा, आपकी सेवा में मुझे नियुक्त करिए, तो ये हमारी प्रार्थना है। जप करो, ये सारी प्रार्थना है। सो मन से, वचन से, अब आया शरीर से, काया से, मन वचन काया, काया शरीर से कैसे हम प्रार्थना करेंगे? प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक क्या है? वो नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, जो नाम संकीर्तन करता है भगवान का, उसके सारे पाप नाश होते हैं। प्रणामो दुख समनास, प्रणामो दुख समनास, और अगर भगवान को कोई प्रणाम करता है तो सारे दुख भी चले जाते हैं। नाम लेने से पाप से मुक्त होते हैं, प्रणाम करने से दुख से मुक्त होता है। तम नमामि हरम परम, बस भगवान को ये करो। तो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है सुखदेव गोस्वामी का, भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो। आप देखिए भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान यही बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ममे वैश्यसि युक्तवैव आत्मा नाम मत्परायण माम नमस्कुरु, मेरे मुझे प्रणाम करो। भगवान खुद बोलते हैं प्रणाम करो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो वंदनम माने भगवान को प्रणाम करना। भगवान को प्रणाम करने से हमारे दुख भी चले जाते हैं और भगवान को प्रणाम करने से पाप भी चले जाते हैं। से अगर आपने कभी जो ऑफिस में काम करते हो उनको ये आइडिया होगा, ये जो स्टैम्प पैड होता है ना, स्टैम्प्स, आप स्टैम्प मारोगे ना तो अगर आप स्टैम्प को ऐसे देखोगे ना, सब उल्टा उल्टा दिखाई देगा, लिखा हुआ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इंक डाल के थप्पा मारोगे तो सीधा सीधा है सब, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, सब सीधा सीधा लिखा रहेगा। उसी तरह से हमारी जो ये लकीर है ना, सब उल्टी उल्टी है, पूर्व के इतने हमारे पाप है, लेकिन जब हम प्रणाम करेंगे ना, बस ऐसा थप्पा लगता है ना, सारी लाइन सीधी हो जाएगी, सब सीधा हो जाएगा हमारा। तो बहुत ज़रूरी, हमारा ये जो सिर है ये बस झुकना चाहिए, झुकना चाहिए, बार बार झुकना चाहिए ठाकुर जी के सामने। अब देखिए रघुनाथ दास ठाकुर एवरी डे भगवान को 1000 बार प्रणाम करते थे, 3000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे। प्रणाम करना, वंदन करना। तो हमने चर्चा की हमें क्यों करनी चाहिए प्रार्थना, हमने चर्चा की कैसे करनी चाहिए प्रार्थना, अब हम आ गए लास्ट भाग में क्या करनी चाहिए प्रार्थना। कैसे करनी चाहिए समझ में आ गया, क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए प्रार्थना में, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूँ मैं भगवान को, मैं खड़ा रह के क्या बात करूँ भगवान से। तो इसकी बहुत अलग अलग टाइप्स है। धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद करो, जैसे कुंती देवी ने की थी, पुरानी बातें याद करके, आपने मेरे बेटे भीम को बचाया, आपने हमें विशालय वो क्या वारणाव्रत के इंसिडेंट से आपने हमें बचाया, विशैले नाग से बचाया, इससे बचाया, उससे बचाया, बस सारी बातें, पूर्व की सारी बातें याद कर करके भगवान को थैंक यू। जैसे भीष्म ने भगवान से कहा, आप कितने अच्छे हैं इस अंतिम समय में जब मैं मेरे देह का त्याग कर रहा हूँ, आप बिना भूले आए हो ठाकुर जी, मेरे लिए आए हो आप। तो उन्होंने, भीष्म ने भगवान ठाकुर जी को धन्यवाद किया, कुंती देवी ने ठाकुर जी को धन्यवाद किया, प्रहलाद महाराज ने धन्यवाद कहा कि आपने मुझे नारद मुनि जैसे गुरु दिए, आपको धन्यवाद। तो एक टाइप ऑफ प्रार्थना है जहाँ पे हम भगवान को धन्यवाद दें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये शरीर दिया, आपने मुझे ये दो कान दिए, आँख दिया, नाक दिया, मैं आपकी कथा सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, बुद्धि दी मुझे, ये शरीर दिया मुझे, गुरु दिए मुझे, इस्कॉन संस्था दी मुझे, भागवत पढ़ने का मौका दिया मुझे, जप करने का मौका दिया, आपके प्रसाद के आस्वादन करने का मौका दिया, भक्तों का संग दिया, मेरे परिवार में ये है वो, कितनी सारी बातें हैं। बस हम अगर धन्यवाद करना शुरू करें तो पूरी रात निकल जाए। तो भगवान को धन्यवाद करो। दूसरा है भगवान को दैन्य बोधिका, अपने आप के बारे में बताओ भगवान में कितना गिरा, जैसे जैसे वो इंद्र की प्रार्थना आती है ना कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैंने ऐसा, गोवर्धन लीला के बाद में आता है ना, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, वैसे ये एक प्रार्थना का अंग है जहाँ पे हम ठाकुर जी से बोले कि मैं आपको भूल गया, मैं मेरे में इतना क्रोध है, मोह है, काम है, ठाकुर जी मेरे में इतना काम है, मेरा हृदय ऐसा है, तो अपने बारे में सच बताना, जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाके बताते हैं, तो धन्यवाद देना, अपने बारे में बताना, और उसके बाद में माफ़ी मांगना, सॉरी कृष्णा, आई एम सॉरी, मैं इतने 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 जन्म ले चुका और आप मेरे साथ साथ घूम रहे हो और मैं भूल गया आपको, तो माफ़ी मांगना, कृष्ण को माफ़ी मांगना, जैसे कालिया ने माफ़ी मांगी थी, नागपत्नियों ने माफ़ी मांगी थी, माफ़ी मांगना, रिपेंट करना, पश्चाताप करना, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला के बाद माफ़ी मांगते हैं, गोवर्धन लीला के बाद में इंद्र माफ़ी मांगते हैं, तो माफ़ी मांगना, धन्यवाद करना, अपने आप के बारे में भगवान से बताना, भगवान के गुणगान करना, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव ने किए थे, भगवान आप कितने महान हो, ये पूरे सृष्टि के आप जो है यजमान हो, ऐसे भगवान के बारे में अच्छे अच्छे गुणगान करना, जैसे 64 क्वालिटीज़ है ना भगवान कृष्ण की, उनमें से उनको याद करके करके भगवान आप क्षमा कर देते हो, आप कितने दयालु हो, आप बुद्धिमान हो, आप सुंदर हो, आप ऐसे भगवान के अलग अलग गुणों का गान करना, ये प्रार्थना है। और लालसा में प्रार्थना माने कुछ मांगना। अब भौतिक मांग सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन रहता है, क्या भौतिक इच्छा मांग सकते हैं, हाँ मांग सकते हैं, आइडियल वुड बी कि आप आध्यात्मिक इच्छा ही मांगे, लेकिन ये भी गलत नहीं है, शुरुआत के लिए ठीक है, ध्रुव महाराज भी भौतिक इच्छा से ही गए थे और फिर वे पवित्र हो गए, लेकिन भौतिक इच्छा नहीं मांगना चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, नहीं, आप जिस लेवल पे हो बस वहीं से शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगर भौतिक इच्छा भी कभी कभी भौतिक कठिनाइयों से भगवान की मदद नहीं मांगेंगे ना, तो वो सारी कठिनाइयाँ भी हमें भक्ति से दूर कर देती है, तो हम मांग सकते हैं ठाकुर जी को, वो हमारे पिता है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी ये सुविधा, हमारी ये कष्ट आप निकाल दीजिए, सो देट हम आपकी भक्ति और भी अच्छी तरह से कर सकें, तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ प्रार्थना है। और हमारे जीवन में इंस्पायरिंग प्रार्थना किन्होंने की थी, हमारे गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद, अगर आपको पता हो ये बहुत सालों बाद प्रभुपाद जी जब गोलोक धाम चले गए, उसके बाद आई थिंक 1980s में या कुछ, हृदयनंदस बाबा जी महाराज बोल के एक महाराज थे, नाम से एक महाराज थे, वे राधा दामोदर मंदिर के पास में, मतलब उनका जो कुटीर थी, उनका जो घर था, वो राधा दामोदर मंदिर जो है वृंदावन में जहाँ पे प्रभुपाद जी थे, उस मंदिर से लग के था उनका घर, तो वे बता रहे थे भक्तों से कि आपके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद इतनी तीव्र प्रार्थना करते थे, तो कभी कभी रात को मैं सुनता था 1 बजे 2 बजे किसी की आवाज़ आ रही है, तो पहले तो मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, रात को 2 बजे क्या आवाज़ आती है, एक दिन मुझे बहुत, मैं व्याकुल हो गया, एक बार मुझे देखना है कौन इतनी आवाज़ कर रहा है, तो मैं क्या, वो कहते हैं कि मैं जो है वो बाउंड्री वॉल को चढ़ के देखा, झाँक के देखा, झाँक के क्या देखता हूँ, प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी समाधि के सामने झाड़ू देते हुए रो रहे हैं, आँख में से आंसू निकल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए, मैं गुरु के वचन का पालन करना चाहता हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ कृष्ण भक्ति का, आप मुझ पर दया करिए। तो ये हम जो देख रहे हैं प्रभुपाद जी का सक्सेस, बस वो ऐसे ही नहीं आ गया है, उसके पीछे उन्होंने बहुत प्रार्थना की है, और नॉट ओनली राधा दामोदर मंदिर में, तो रूप गोस्वामी के सामने वे रोते ही थे रात रात भर, लेकिन इवन शांतिपुर में जहाँ पे अद्वैत आचार्य का घर है, वहाँ भी वे जाते थे, वहाँ का एक पुजारी कुछ साल पहले मायापुर आए थे, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को शायद पता नहीं हो, मैं ये बात आपको बताने के लिए आया हूँ, उन दिनों में मैं पुजारी था शांतिपुर में, और आपके जो गुरु महाराज थे वे गृहस्थ थे, वे आते थे और पीछे बैठ जाते थे माला बैग लेके, और माला करते थे और रोते थे, माला करते थे रोते थे, फिर हमारी दोस्ती हो गई थी, उसके थोड़े दिन सालों के बाद मैंने देखा वो सन्यासी बन गए और एकदम सन्यासी डंडा लेके आए, फिर मैंने उनसे कहा अरे मैंने तो आपको कहीं देखा है, फिर उन्होंने कहा मैं अभय बाबू जो पहले, ओहो तो अभी आपने सन्यास ले लिया, तो बोला हाँ, तो अब बोला कि मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ, और वे रो रहे थे, तो ये पुजारी जो है अद्वैत आचार्य के शांतिपुर के जो मंदिर के पुजारी थे वे कह रहे थे कि आपके गुरु महाराज को मैंने रोते हुए देखा है, बस जप करते थे और रोते थे, गृहस्थ थे तभी भी, सन्यासी होने के बाद भी बहुत बार जो है वे आए थे और बस वो मंदिर के पीछे आंगन में बैठ जाते थे और एक एक माला जप करते थे और रोते थे। तो उनका जो ये रोदन, ये जो प्रार्थना है, ये उनको जो है सक्सेस जो है उनको लेके आया है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे ही, उन्होंने गौड़ीय मठ आरंभ नहीं किया, 9 ईयर्स तक एवरी डे 192 राउंड्स माला करते थे वो। 9 साल तक कंटिन्यूज आसान है 192 राउंड्स जप करना, उसके बाद उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की। तो हम जिनका भी सक्सेस देखते हैं हम सोचते बस ऐवे एकदम फ्लूक में इनका लक बहुत अच्छा है, किस ये लक नहीं है, ये प्रार्थना है भगवान से की हुई प्रार्थना उन्हें उनका सशक्त क्या करती है, उनको सशक्तिकरण, उनको एम्पावर करती है। नहीं तो आसान है क्या, ऐसे ही बस प्रभुपाद जी बस गए और इतने हजारों की संख्या में सबको भक्त बना दिए उन्होंने। तो ये उनकी जो भगवान की हुई प्रार्थना है। तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किस किस ने प्रार्थना की, और हमें प्रैक्टिकल कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, हमें मन में ये हो सकता है पर मैंने तो की थी प्रार्थना, भगवान सुनते नहीं मेरी प्रार्थना, कितना बार प्रार्थना करता हूँ आज तक कभी कुछ फल नहीं मिला। तो ये प्रार्थना हमें फुल फेथ से करनी चाहिए। अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं मतलब ही हैज़ ए बेटर प्लान, शायद आपका प्लान उन्हें पसंद नहीं आया, शायद ठाकुर जी को आपका प्लान पसंद नहीं आया, ही हैज़ हिज ओन प्लान। तो ये विश्वास हमें रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए, प्रार्थना प्रेममय ही होनी चाहिए, प्रार्थना में भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हमें भगवान की लीला नहीं आती समझ में है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि भगवान हमारे शुभ चिंतक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। बहुत साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, ना हम करता हरि करता, तिरुपति बालाजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहाँ पे 1972 में, ये एक सच्ची घटना है, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है पहाड़ों के ऊपर में है और वहाँ के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे अभी भी एक सिस्टम है तिरुपति में, ईओ जो होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वे हेड होते हैं तिरुपति मंदिर को, वे चलाते हैं, फाइनेंसेस वगैरह देखते हैं। 1972 में एक IAS ऑफिसर जो तिरुपति बालाजी मंदिर के हेड थे, उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपना एक स्वानुभव, उनके साथ में एक जो अनुभव हुआ ठाकुर जी के साथ, उन्होंने वो लिखा है। तो वे बता रहे थे कि उनको आदत थी वीकली वंस जो है वे 3:30-4 बजे करीबन अपने घर, उनका नीचे था पहाड़ के नीचे, वे पहाड़ के ऊपर चले जाते थे, रात को वहीं गेस्ट हाउस में रुक जाते, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे का अभिषेक भगवान का देखते और फिर ऑफिस चले जाते थे। उस दिन शाम को वे अपनी किताब में लिखते हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था जाने के लिए, कुछ ना कुछ काम आ गया, कुछ फाइल साइन कर रहा हूँ, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, बस कुछ ना कुछ काम आ गया। तो 3:30 बजे का 4:30 हो गया, 4:30 का 5:30 हो गया, 5:30 का 6:30 हो गया और काम में लगे हुए हैं। उनकी पत्नी आके उनको कहती है कि क्या बात है, आज आप जाएंगे नहीं, टाइम हो जा रहा है। और उन दिनों में वाइल्ड एनिमल्स जो है, क्रूर जंतु जानवर होते थे पहाड़ के ऊपर में, तो उनका सिस्टम ये होता था कि रात को 7:30 बजे के बाद कोई गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी, ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, जो भी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो उनकी पत्नी याद करा रही है, देर हो रही है, आप जाओगे नहीं? नहीं जाऊँगा, जाऊँगा, जाऊँगा। फाइनली 9:30 बजे उनका ड्राइवर आया, सर मैं घर चले जाऊँ, आप नहीं जाएंगे आज? अरे नहीं नहीं मैं जाऊँगा, जाऊँगा, चलो चलो चलते हैं। सारी फाइल बंद की, ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो, चलो चलते हैं मंदिर। तो अब जब वो पहाड़ के ऊपर में जाना है तो पहले एक सिक्योरिटी बिट आता है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोका और पूछा क्या है आज मंदिर का हाल? तो बोला सर पूछिए मत, आज तो मंदिर का हाल बेहाल, इतने आज तो इतने दर्शन के लिए लोग आए हैं, इतने लोग आए ऊपर पहाड़ में, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। तो बोला ठीक है चलो तुम सावधान, वो गाड़ी से जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा रास्ता है पहाड़ के ऊपर में। बीच में उन्होंने क्या देखा, कोई आदमी खड़ा है एकदम ऐसे दो हाथ ऐसे करते हुए। अब ये डर गए कि कोई 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 ये मत क्या बोलते ना, थीफ या कोई चोर उचक्का तो नहीं है। अब देखा उसकी गाड़ी खराब हुई पड़ी है, अब इन्होंने बहुत सावधानी से गाड़ी का कांच नीचे किया, बोला क्या है, कौन है आप, क्या चाहिए? बोला नहीं सर, मेरी मदद करिए, मैं मेरा बेटा, मेरा बहू, नई शादी हुई है, मेरी पत्नी, हम सब ऊपर जा रहे थे, कुछ घंटों से हम यहाँ हैं, 7 बजे से नीचे गेट बंद है, कोई गाड़ी आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, दया करके हमें लिफ्ट दे दीजिए। अब इस आदमी को पता नहीं है कि ये तो तिरुपति मंदिर का मेन बॉस है, वो सोच रहे हो भी होगा कोई दर्शन करने के लिए जा रहा होगा। अब इसको दया आ गई, बोला ठीक है चलो सब गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कैसे भी करके सब जो है इतने सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब रास्ते भर ये आदमी अपनी कहानी बता रहा है उस ऑफिसर को, बोलता है कि आज मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया, मैं बालाजी को इतना प्रेम करता हूँ, तिरुपति के बालाजी भगवान को मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने मेरे मन में सोचा था कि मेरे बेटा का जब शादी होगा सबसे पहले मंडप से मेरे बेटे बहू को लेके मैं बालाजी का दर्शन कराऊंगा, बाद में सारे जो दूसरे रिचुअल्स होते हैं मैं बाद में कराऊंगा, पहले मुझे मेरे ठाकुर जी का ब्लेसिंग्स चाहिए, और सारे मेरे रिश्तेदार मुझ पे क्रोधित हैं, तुम पागल हो, 2 दिन के बाद भी तो जा सकते हो, इतने घंटों का जर्नी करोगे, बालाजी का दर्शन करोगे, फिर वापस आओगे, सब मुहूर्त यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे ठाकुर जी के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इतना प्यार करता हूँ ठाकुर जी से, लेकिन आपने देखा मेरे ठाकुर जी ने मेरे साथ क्या किया, मैं आज 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब है, अब मेरा जो टिकट है वो वैलिड नहीं होगा, अब मुझे दर्शन नहीं होगा, ये गाड़ी कब रिपेयर होगा, मैं वापस कब जाऊंगा, क्या जो भगवान से प्यार करता है क्या भगवान उनके साथ में ऐसा करते हैं, आज मेरा भगवान से विश्वास। बस रोता रोता वो जो है बातें करते करते जा रहा था। अब ये जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वे उनको लेके गए, कुछ नहीं बोले कि मैं यहाँ का हेड हूँ, कुछ भी नहीं बोले, बस उनको बोला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप आइए। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि इनको इमीडिएटली जो है दर्शन कराओ भगवान का, VIP दर्शन कराओ, इनकी गाड़ी रिपेयर कराओ, इनको रात को यहाँ पे हमारे गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन दो, प्रसाद खिलाओ और फिर सीधा मैसूर भेजो, वे लोग मैसूर से आए थे। और उसके बाद वो बोल के चले गए। अब ये इनका जो है सब दर्शन हो गया, वे वापस चले गए। 15-20 दिन के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, बोला सर मेरा शादी वगैरह सब हो गया, मुझे पता नहीं था कि आप तिरुपति के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, मुझे लगा आप भी मेरे जैसे ही कोई हो, लेकिन मुझे आप शर्म आ रही है, मैंने कितना कुछ बोल दिया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी मुझे प्रेम नहीं करते, ठाकुर जी ने मेरा, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया जान मुझ के ठाकुर जी ने मेरी गाड़ी ख़राब की, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी ख़राब नहीं होती और अगर मैं टाइम पर मंदिर पहुँच जाता तो भी दर्शन होने से रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि मेरी जो टिकट थी उस टिकट पे तो मुझे आज दर्शन होने से रहे। और कभी कभी तिरुपति में ऐसा होता है, अगर आप लाइन में खड़े रह गए हो ना तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आपको मतलब वेट करना ही पड़ेगा, तो मेरा सारा कार्यक्रम ख़राब हो जाता था, मेरा वहाँ पे जो मुहूर्त निकला था, शादी के जो दूसरे रस्म थे, सब कुछ ख़राब होने वाला था, तो जान मुझ के ठाकुर जी ने मेरी गाड़ी ख़राब की सो दैट मैं आपके साथ मिलूं, और आप तो यहाँ के हेड हो तो आपने मेरे को 10 मिनट में दर्शन भी करवा दिया, मेरी गाड़ी भी ठीक करवा दी, और मुझे टाइम पे ठाकुर जी ने जो है मंडप पे पहुंचा दिया। तो फिर वो अपने चिट्ठी में लिखते हैं कि कैसी अजीब है ठाकुर जी की, क्या कहते हैं ना, मतलब उनकी कर समझ में नहीं आते, उनके कर्म कार्य क्या करते हैं वो, हमें शायद कुछ 10 दिन बाद समझ में आए, कुछ 1 साल बाद, कुछ 15 साल बाद समझ में आए कि ठाकुर जी ने हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया। तो पर हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, भक्ति डायनामिक प्रोसेस है। मैकेनिक प्रोसेस हो ना तो आसानी से समझ में आ जाए। आज मैं ना अगर बोलूँ कि मैं रेस लगा रही हूँ विशाखापट्टनम से मायापुर, कार, स्कूटर और साइकिल, कौन पहले पहुँचेगा आप बताइए, कौन पहले पहुँचेगा? कार, करेक्ट? नहीं, अगर साइकिल पहुँच गया तो आप बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता माताजी। लेकिन मैं कहूँगी अगर किसी हेलीकॉप्टर ने साइकिल को उठा के रख दिया तो साइकिल जीत जाएगा। बस ये है भक्ति का ऐसा प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, कब ठाकुर जी किसकी मदद कर दे, कब कौन जीत जाए, कब किसी को पीछे कर दे, पता नहीं है। पर द बॉटम लाइन इज वे हमारे शुभ चिंतक है और वो हमें प्यार करते हैं, ये बात बस हमें समझनी चाहिए। तो प्रार्थना के बारे में मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने प्रार्थना की इज इक्वल टू सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए मेरे जीवन में। नहीं, प्रार्थना इज इक्वल टू भगवान तुम्हारे साथ है, कैसे ठीक करेंगे वो उनका प्लानिंग है, वो तुम्हारी परिभाषा से ठीक नहीं करेंगे, वो उनकी बुद्धि से तुम्हारी जीवन को जैसे करना है उस दिशा में वो ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है। शायद अब समझ में ना आए, शायद आगे चल के समझ में आए। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए बिना कोई शर्त की, और प्रार्थना भक्तों के द्वारा करनी चाहिए, प्रार्थना भक्तों के द्वारा। जिस तरह से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो दूर से गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर गरुड़ के द्वारा करते हैं कि भगवान गरुड़ को देखेंगे जो उनका भक्त है, इसलिए मुझे देखेंगे। उस तरह से हम भी जब प्रार्थना करते हैं भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, राधा रानी के द्वारा। रूपा जी कहते हैं ना कि जब हम खड़े रहते हैं राधा कृष्ण के सामने तो हमें बोलना चाहिए, ओ माय डियर राधा रानी, मेरे प्रिय राधा रानी, आप अपने कृष्ण को मेरे बारे में कुछ कहिए। बस उस तरह से हमें जाना चाहिए, वाया गुरु परंपरा, वाया राधा रानी। और हमारी प्रार्थना का सबसे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी, जब भी हम प्रार्थना करें हमें भगवान से कहना चाहिए इफ़ यू विश, ठाकुर जी अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो। ये बहुत ज़रूरी है। वो हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, वो हमारे सर्वेंट नहीं है, ज़रा ये कर दीजिए ना, ज़रा वो कर दीजिए, वो बेल बॉय नहीं है। हमें कहना है ठाकुर जी ये मेरी मुश्किल है, अगर आप चाहो तो आप मेरे लिए ये कर दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरी रक्षा कर दीजिए, आप मुझे सही मार्ग पर, अगर आप चाहो तो। ये बात प्रभुपाद जी बहुत क्या करते ना, मतलब एकदम बताते थे, एकदम इम्पोर्टेंट देते थे कृष्णा, इफ़ यू विश, अगर आप चाहो तो। तो ये थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हमें हमारी प्रार्थना में मिक्स करनी चाहिए। तो उस तरह से सरल भाव से भगवान की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से, शुद्ध हृदय से, बिना कोई एक्टिंग के, बिना कोई नाटक के। गोपियों ने बिना कोई नाटक भगवान से प्रार्थना की थी, वे जैसे थे वैसे, तब भगवान ने उन्हें अपनाया था। सुरपंखा नाटक करके गई थी तो भगवान ने उसके कान और नाक क्या कहते हैं ना, मतलब काट दिए थे। तो हम भी अगर सुरपंखा के जैसे जाएंगे तो हमारे कान नाक कट जाएंगे। गोपियों जैसे सरल भाव से हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने जाना है, उन्हें सरल मन से जो है उनकी प्रार्थना करनी है। तो विद दिस मैं आज यही ख़त्म करूँगी, और हम सब प्रार्थना करें कि भगवान हमें प्रार्थना करने की शक्ति दे, और प्रार्थना भी हम ऐसे करें जहाँ पे हम भगवान से कुछ ना मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे। ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धि भगवान हमें दे। मैं आज यहीं ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वन क्वेश्चन मे बी, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। काफ़ी साउंड का डिस्टर्बेंस है, बट मुझे जो समझ में आया, आप कह रहे हैं कि कुछ फेस्टिवल्स हम बहुत जोर शोर से बनाते हैं, उत्साह रहता है, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स में उत्साह नहीं रहता है, तो हम क्या करें जिससे हर फेस्टिवल में उत्साह एक ही प्रकार से बना रहे, यही आपका क्वेश्चन है। ओके सो उत्साह का एक टिप है श्रवण करना। जब हम श्रवण करते हैं तब एक उत्साह आता है कोई भी चीज़ करने के लिए। जब हमारा श्रवण कीर्तन थोड़ा सा वीक हो जाता है तब उत्साह कम हो जाता है। जैसे अगर नरसिंह चतुर्दशी है और आप एक 10 दिन पहले से ही मंदिर में भागवत क्लास में भी नरसिंह देव के बारे में और उनकी सेवा करने से, उनकी वो कैसे कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तब एक एक्साइटमेंट अंदर में बिल्ड होती है और फिर हम जो है उत्साह से कर सकते हैं। तो श्रवण करने से जो है, ऑल्सो जो डिवोटीज उत्साही है ऑलरेडी, जो है एंथुजियास्टिक है, उनका संग करने से भी हमें उत्साह बढ़ता है। तो ऐसा हमें जो है अलग अलग टिप्स। अगर उत्साह नहीं आ रहा है तो समवेयर हमारी कॉन्शियसनेस में कुछ प्रॉब्लम है, शायद हमारा जप कुछ वीक हो रहा है। तो ये सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, इधर अवर चैंटिंग में कुछ कमी है, या हम सही भक्तों के संग में नहीं है, या हम ठीक से श्रवण नहीं कर रहे हैं। ये श्रवण करेंगे तो एक उत्साह तो बनेगा ही बनेगा। नरसिंह चतुर्दशी के थोड़े दिन पहले से ही शुरू करो उनकी कथा सुनना। नित्यानंद त्रयोदशी है तो उनके संबंध चेतन चैतन्य से कुछ पढ़ रहे हैं, तो अपने आप से एक जो है उत्साह बनेगा। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आप किस कम्युनिटी में हो, वहाँ का वातावरण क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपका अब बंगाल में हो तो बस कितनी भी कोशिश करो लेकिन गौर पूर्णिमा का थोड़ा सा ज़्यादा वैभव हो ही जाता है, बिकॉज एक लोकल पीपल का भी एक एंथुजियाज़म, जैसे हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में ना रामनवमी का बहुत एंथुजियाज़म होता है, क्योंकि इवन दो जो बिल्कुल मतलब जो मेंबर्स एंड डोनर्स है शायद इस्कॉन के भक्त नहीं है, लेकिन रामनवमी मतलब वो पक्का आएंगे। यहाँ पे जो तेलुगु लोग होते हैं सीताराम कल्याणम, सीताराम की शादी करवाते हैं, तो कभी कभी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, कभी कभी क्लाइमेटिक सिचुएशन भी है, जैसे कभी कभी रथ यात्रा के सीज़न में बारिश वगैरह भी हो तो कभी उसमें भी थोड़ा सा डल हो जाता है उत्साह, कभी कभी फाइनेंशियल सिचुएशन भी होती है उस मंदिर की, उस कम्युनिटी की, शायद हर फेस्टिवल समान भाव से ना मना सके, तो सोशल कारण भी है, कुछ इकोनॉमिकल कारण भी होते हैं, कुछ कम्युनिटी रीजंस भी होते हैं, कुछ हमारे श्रवण कीर्तन भी वीक होती है, कुछ हमारी जप का भी प्रॉब्लम होता है, कुछ हमारे एसोसिएशन का भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसी कौन सा चीज़ प्रॉब्लम दे रहा है उस पर हमें सोचना है, मतलब जस्ट गंभीरता से सोचना है कि क्यों ये हमारा एंथुजियाज्म डाउन जा रहा है, कहाँ गलती हो रही है, इसको चेक करना है। थैंक यू सो मच, यहाँ पे ख़त्म करूँगी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा।